رسول الله وعداء آل رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أذان محترم، 40 نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کے شہر تعلیم میں یہ آج تیسری مجلس ہے، اور آپ کے دیے ہوئے ایک ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ایک طرف جہاں تمام کربلا کے ماننے والے، غدیر کے ماننے والے منتظرین منجی عالم بشریت ہیں، یعنی پوری انسانیت کو اور پوری زمین کو نجات دلانے والی اس ہستی کے انتظار میں ہیں، اور اس کے الہی نظام کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف نظریاتی طور پر اور بعض اوقات عملی طور پر بھی ایسے خیالات، افکار، نظریات، تھیوریز، ایزمز کے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ جو اصلی ڈائریکشن ہے الہی، ولائی، غدیری، قرآنی، امامی، حدیثی، اس ڈائریکشن سے انسان تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں وہ معاشرے کے لیے اور نظاموں کو، جو امام زمانہ کے نظام سے ہٹ کر ہے، جو خدا کے نظام سے ہٹ کر ہے، اور سسٹمز کو پریفر کرنے لگ جاتا ہے اور اس سے متاثر ہو جاتا ہے. تو جو موضوع آپ نے دیا ہے وہ عالم بے زمان ہے یہ موضوع، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا العالم بزمانه لا يحجم عليه اللوابس، جو اپنے زمانے کے حالات سے بہتر آگاہی رکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے اوپر پھر مختلف حادثات، واقعات، خیالات اسے اغوا نہیں کرتے اور اسے آ کے توڑتے نہیں ہیں، صراط مستقیم سے اس کی ڈائریکشن کو بدلتے نہیں ہیں. تو اس طرح کے موضوعات کو گفتگو کرنا، ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ جیسے سمجھدار اور فہم رکھنے والے افراد کا اور مومنین کرام کا کہ آپ نے یہ موضوع انتخاب کیا. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہاں کے آرگنائزرز کا سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کون آرگنائزرز ہیں، ہمارے کمیل بھائی جو کہ میزبان، اس گھر کے اندر میزبانی کا شرف ملا ہوا ہے، لیکن کمیل بھائی کے ساتھ کچھ اور آرگنائزرز مہمان میں سجاد بھائی ہیں، ہمارے شاہد بھائی ہیں، اجلال بھائی ہیں، اور میرے خیال میں ایک آدھ بھائی میں نام بھول گیا ہوں، جی فاخر بھائی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور آپ مومنین جو کہ شرکت کرتے ہیں یا تھرو دا آن لائن سنتے ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ کے یہاں پہ ہمارے عددی اعتبار سے ایک چھوٹی سی تعداد ہے، عدد کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بڑی مضبوط ماشاء اللہ، فکر کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے بڑی اسٹرانگ اور مضبوط، جو کہ بہت کم ہی کمیونٹیز میں اس طرح کی شخصیات اور افراد ملتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کے شہر میں ہیں. یوٹیوب کے تھرو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک اچھی تعداد اسے دیکھ رہی ہے یا سن رہی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار آپ بحق کے دم مظلوم کربلا تمام برادران اور ہماری خواہران تمام عزیزوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. میں نے ایک موضوع سے ہٹ کر آیت تلاوت کی اور تیزی سے مجھے چند منٹ لینے ہیں آپ کے. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ دیکھیں، میں اب ترجمے ہی سناتا ہوں، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، یعنی عقل والوں کو پتا ہوتا ہے کہ جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے، جس چیز کو جانتا ہے، اور جو آدمی اس کا ایکسپرٹ نہیں، جانتا نہیں ہے، وہ ایکول تو نہیں ہو سکتے ہیں. میں ظاہر ہے بیمار ہو جاؤں گا، کسی ڈاکٹر کے پاس ہی جاؤں گا، کیونکہ ڈاکٹر میرے باڈی اور جسم کو بہتر جج کرتا ہے. اگر مجھے کسی سافٹ ویئر کا ایشو بنتا ہے تو میں سافٹ ویئر انجینئر یا ایکسپرٹ سے رجوع کروں گا. اسی طرح دینی کوئی مسئلہ آتا ہے تو دینی ایکسپرٹ سے، جس نے टाइम दिया है, इल्म हासिल किया, उससे करूंगा। कह रहे हैं कि ये बहुत सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल थिंकिंग है, कोई रेशनल आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर कोई हदीस और कुरान की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बाज औकात क्या होता है कि हम लोगों के ऊपर जब हवाए नफसानी अकल के ऊपर गलबा पाती है, तो इतनी छोटी सी बात भी हम अंडरस्टैंड करते हुए लंबे चक्कर लगाते हैं और बड़ी उम्र का हिस्सा जाया कर देते हैं, उसके बाद समझ में आता है। इसीलिए जो है इल्म दीन हासिल करने वाले, मैं एक तालिबे-इल्म हूँ, मौलाना और मौलवी की बात नहीं कर रहा, उलमा की बात कर रहा हूँ, जो हमारे मराजे उज़्ज़ाम है उनकी बात कर रहा हूँ। उनके बारे में हुजूर पाक ने फरमाया, ये वसाइल शिया में ये हदीस है हमारी, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स में, इन कहता है इदाकाना योमिल कियामती वज़्नु मिदादिल उलमा बिदिमा शुहदा फयरजउ मिदादिल उलमा अला दिमा शुहदा। बहुत ही अजीब हदीस है। आप जानते हैं शहीदों के बारे में कुरान ने कहा ये जिंदा है, इन्हें मुर्दा ना कहो, वला तहसबन्न अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन, अपने रब से रिज़्क़ पाते हैं। लेकिन इन्हीं शोदा के बारे में, जब इन शोदा को उलमा के मुकाबले में, हमारे मराजे और मुज्तहिदीन के मुकाबले में ये शोदा आते हैं, तो खुदा फरमाता है लिसान पैगंबर के जरिए से कि कयामत के दिन आलिम की नहीं, आलिम के कलम की जो स्याही है, मिदादुल उलमा का, कि ये जो है दिमा उस शोहदा, शहीदों के खून से ऊंची होगी, बुलंद होगी, इसका वजन ज्यादा होगा। क्यों? वो जो शहादत दे चुका है उसके पीछे आलिम का कलम ही है। अगर आपने अभी मुकद्दसात के लिए खतरात थे दाइश जैसे दहशतगर्दों के जरिए से सीरिया के अंदर और इराक के अंदर, तो आपने देखा वो आलिम की ही कलम थी ना जिनका फतवा था कि सारे जवान उठ के खड़े हो गए। तो मिदादुल उलमा अफजलु मिन दिमा शुहदा, एक और हदीस के अंदर फरमाया। इसीलिए उलमा को कहा, नबियों के वारिस हैं ये लोग। जाहिर है ये नबी कोई जायदाद तो छोड़कर नहीं जाते प्रॉपर्टी की, जिसकी विरासत ट्रांसफर होके उलमा को मिल जाएगी, मौलवी हजरात को नहीं। ये इल्म, तबलीग दीन, लोगों को जगाना, लोगों को शऊर देना। हम ज़ियारत अरबईन में इमाम आली मकाम को मुखातब करके कुछ जुमले कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ अरबईन, तकरीबन सेकंड फेज के अंदर ही ये जुमले कहते हैं, आपने कुर्बानी दी ए नवासे रसूल, आपने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, आप पूरी फैमिली बच्चे सब ने कुर्बानियां दी, इसके पीछे बिहाइंड द सीन अहदाफ आपके क्या थे? तो ज़ियारत के अंदर मासूम ने सिखाया, और ज़ियारत अरबईन के अंदर लियस्तनकिदा इबादका मिनल हैरति वज़्ज़लालति वज़्ज़हाला, कि ताकि आप खुदा के बंदों को कंफ्यूजन से, इल्मी कंफ्यूजन से, अमल के कंफ्यूजन से, कल्चरल कंफ्यूजन से, एजुकेशनल कंफ्यूजन से आप निकालें उनको, उस हैरत से, उस परेशानी से निकाल कर आप दुरुस्त डायरेक्शन दें उनको, आपने इसलिए कुर्बानी दी। मासूम सिखा रहे हैं कि आप अपने इमाम आली मकाम को जब जियारत करते वक्त जो जुमले एजाज में इमाम के हुजूर बयान करेंगे कि आहदाफ के तौर पर, तो कहें ए मेरे इमाम, आपने कुर्बानी दी ताकि लोग जहालत से, गुमराही से निकल आ जाएं, लोगों को हक की पहचान हो जाए, लोगों को सच की मालूमात मिल जाएं। इसीलिए आखिरी इस मौजू के ऊपर जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है, इसलिए देखें जहां इतना बड़ा स्टेटस दिया है उलमा के लिए, मुज्तहिदीन, हमारे मुज्तहिदीन के लिए, वहां उनकी जिम्मेदारियां दी हैं कि आप माशरे के प्रेशर को नहीं लेंगे, सोसाइटी के दबाव में नहीं आएंगे। अगर सोसाइटी गलत ट्रैक पे जा रही हो तो आपने उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपने क्या करना है, आपने उन बिद्दतों को रोकना है। मसलन बहुत सारी हदीसें हैं हमारी अहादीस की किताबों में, फरमाते ज़हरतुल बिदउ फी उम्मती, हुजूर पाक फरमाते अगर मेरी उम्मत में बिदतें जाहिर होना शुरू हो जाएं, फलयुज़हिरुल आलिमु इल्महु, आलिम को अपना इल्म इस्तेमाल करना होगा, छुपा के नहीं रखना होगा, डरना नहीं होगा, अगर ये बात करूंगा तो पता नहीं लोग नाराज होंगे, अगली दफा मुझे मेंबर पे बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे, पता नहीं लोगों का रद्द अमल क्या होगा, वो नाराज होगा, ये उसको गुस्सा आएगा, वो लड़ेगा, ये वो करेगा, नहीं। हुजूर पाक फरमाते हैं आलिम के ऊपर फर्ज है, और अगर आलिम इस फर्ज को नहीं निभाता है तो वो खयानत कर रहा है खुद से भी, उम्मत से भी, और हुजूर के का जो भरोसा रहा है आलिम के ऊपर उससे भी। कह रहे इदा ज़हरतिल बिदअतु फी उम्मती, अगर मेरी उम्मत में गुमराही और बिदतें पैदा हो जाएं, फलयुज़हिरुल आलिमु इल्मा, कहता फमन यफअल फमन लम यफअल फअलैहि लानतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। कहता अगर आलिम ये काम ना करे, चुप रहे, खामोश रहे, डर जाए या कहे जी मेरी मेरा ओहदा छिन जाएगा, मेरी पोजीशन से मुझे हटा दिया जाएगा, मस्जिद से मुझे निकाल दिया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, कहता खुदा की उस पर लानत होगी। फिर ये कौन फरमा रहा है? लानत खुदा की आ रही है, और इसकी गारंटी किसने दी है? खुदा के रसूल ने। तो यहां तो शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही है ना। कहा इतना स्टेटस आपको लोगों के सामने प्रोटोकॉल लेने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि लोग आए आपको आगा साहब अल्लामा साहब मुश्तहिद साहब हुज्जतुल इस्लाम साहब, ये करने के लिए नहीं दिया सिर्फ और सिर्फ। वो लोगों का अखलाक है, वो लोगों की बड़ाई है, वो इतने आला अखलाक और एहतराम से पेश आते हैं, ये उनकी बड़ाई है। लेकिन आपने प्रोटोकॉल सिर्फ लेते नहीं रहना, आपने देखना है खराबी है उसे ठीक करना है, डरना नहीं, बोलना है, बताना है, समझाना है, अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से बार बार बताना है, एक दफा बता के थकना नहीं, उन्होंने नहीं सुना। अब बात इधर आ गई, तो आप जो नमाज कुफिला पढ़ते हैं बेन सलातेन, मगरिब व इशा जब वक्त मिलता है, उसके अंदर कुछ दुआएं पढ़ते हैं, कुछ सूरे पढ़ते हैं, उसके वजन नून इज दहाबा मुगाजिबन, क्या मतलब है? ये कौन है वजन नून इज दहाबा मुगाजिबन? वो जो शख्स था यानी वो मछली वाला, वो गुस्से से चला गया, ये कौन था? नबी यूनुस अलैहिस्सलाम। मैं जनीवा में था तो मोमिनीन की तफसीर हो रही थी मोमिन की सिफात के ऊपर, तो मैंने वहां पर काफी बहस की थी इसके ऊपर। वजन नून इज दहाबा मुगाजिबन, वो नून वाला यानी मछली वाला गुस्से में चला गया अपनी कौम से नाराज होकर। क्यों? इसलिए कि कौम ने एक अरसा इतना लगाया लगाया लगाया, सैकड़ों साल कोशिश की, बड़ी लंबी उम्र थी हजरत यूनुस की, कौम ने उसका जवाब नहीं दिया, कौम उल्टा उसको दुत्कारती थी, सुनती नहीं थी, उसको तंग करती थी जगह जगह पर। आखिर में गुस्सा आया नबी को, कौम को छोड़कर भाग गया। खुदा ने कहा अल्लाइन नकदिर अलैहि, क्या तुम ये समझ रहे हो कि हम तुम्हें पकड़ नहीं सकेंगे? खुदा कह रहा है नबी को, नबी यूनुस को। बाद में नबी यूनुस को बड़ा कड़े इम्तिहान, ये तर्क उला था नबी यूनुस का, हराम काम नहीं किया, नऊज़ु बिल्लाह, नबी हराम नहीं करते, तर्क उला करते हैं, यानी जैसे कि हम कोई मकरू अंजाम दे रहे होते, काइंड ऑफ, यानी समझने के लिए। तो नबी यूनुस को क्या हो गया, कश्ती में गए, कश्ती में प्रॉब्लम्स पैदा हो गई, और उसमें लंबी कहानी है, कुरा डालना शुरू किया, जी चले इस कश्ती में कोई तो ऐसा बंदा है जो गड़बड़ है, कुरा डाले तो नबी यूनुस का नाम निकले। कहा नहीं यार, नबी यूनुस तो इतना बड़ा गुजिदा आदमी है, इसका तो नहीं, दोबारा डालो कुरा। फिर नबी यूनुस का, तीसरी बार नबी यूनुस का, चौथी बार नबी यूनुस का। कहा नबी यूनुस को पकड़ो, कश्ती से नीचे फेंको दरिया में, क्योंकि ये हटेगा तो कश्ती चलेगी आगे। यही किया, फेंक दिया नीचे दरिया में, मछली ने खा लिया नबी यूनुस को, कई साल मछली के पेट में रहे। फिर नबी यूनुस ने वहां पर खुदा से माफी मांगी, वो नमाज कुफिला में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, माफी मांगी खुदा से, माफी मांगी तो फिर मछली के पेट से बाहर आ गए। तो ये नहीं है कि कोई भी जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी वजह से एकदम से जो है वो जिम्मेदारी से पीछे हटे, इसलिए कि जी लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, लोग मुझसे नाराज हुए, लोगों ने तो मुझे वेलकम नहीं किया, लोगों ने मेरे उल्टा मुझे बुरा भला कहा, लोग नाराज हुए थे, लोगों ने ऐसा किया था। ना बाबा, आप अपनी ड्यूटी निभाए, आप क्यों घबराते हैं? आपका अपना फरीजा है, उसे आपने अदा करना है। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त जो सिस्टम्स हैं उनमें पॉपुलर तरीन दुनिया के अंदर जो एक सोशल और पॉलिटिकल निजाम है, जिसको ऑलमोस्ट बहुत से ममालिक बड़े अप्रिशिएट करके उसको एक्सेप्ट करने करते जा रहे हैं, इवन हमारे मुसलमान ममालिक भी, वो सेक्युलरिज्म है। और ये तो अब एक फखरिया जुमला बन गया है मुसलमानों की जबान में, भाई रियासत और सियासत को बिल्कुल भी दीन से अलग होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। सेक्युलर मतलब क्या? जिसका कोई दीन से ताल्लुक ना हो। हमने थोड़ी सी सेक्युलरिज्म की डिफिनेशन, उसके बैकग्राउंड के ऊपर गुफ्तगू की। आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा, और कल फिर हम जो है बराह रास्त असर गैबत के अंदर इंटर हो जाएंगे कि वहां अहले तशी के अंदर क्या मसाइल पैदा हुए थे इसको लेकर, वो ये है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर, मुसलमान जो ममालिक हैं, मुस्लिम वर्ल्ड है, इसके अंदर हिस्टोरिकली कब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई और कैसे शुरू हो गई। हमने थोड़ी सी डिस्कस किया कि कैसे जो है बनी उमैया ने इसका आगाज किया हिस्टोरिकली तौर पर, और माविया ने सबसे पहले दीन, ईमान, अमल साले, और इसको सियासत और रियासत से अलग किया, और खुलेआम कूफे में आकर एक स्टेटमेंट दे दी माविया ने, कहा देखो मैं तुम्हारी नमाज रोजे हजो जकात वगैरह की खातिर मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा, मैं इसलिए सख्तियां नहीं कर रहा, तुम उनसे लड़ नहीं रहा हूं कि तुम नमाजें पढ़ो, तुम रोजे रखो, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। कहा नहीं, मुझे अपनी सल्तनत बने, अतामर अलैकुम, कहा कि मुझे अपनी हुकूमत को एस्टेब्लिश करना है तुम्हारे ऊपर, तुम बेदीन बनते हो बनो, बेनमाजी बनते हो बनो। जबकि कुरान कहता है खुदा के साले बंदों की पहचान ये है, ये पिछला दर्स पिछले दुरुस्त का खुलासा है, पिछली जो मजालिस है हमारी उसका खुलासा है। खुदा कहता है इन मकन्नाहुम फिल अर्दी, अगर हम जमीन में उनको पावर देते हैं अकामु सलात व आतु जकात व आमुर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, तो बनी उमैया ने बिगिनिंग कर दी थी, स्टार्ट किया रियासतो सियासतो इक्तदार को दीन से अलग करने का। अच्छा ये तो थी वो जो हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री है उसकी बात करते हैं। नतीजतन अल्टीमेटली क्या हुआ आहिस्ता, असल में तीन फेजिस को हम कह सकते हैं मुस्लिम दुनिया के अंदर, वो तीन फेजिस जो कह सकते हैं वो ये, नंबर 1 इमामत व खिलाफत इलाहिया को मुलुकियत में बदलना, ये पहला फेज था जो कि हमारे तारीखी पस मंजर है। उसके बाद जो थोड़ा सा मुआसरा तारीख कहें जो मॉडर्न दौर है उसके अंदर देखें तो साम्राज्य कुव्वतों का हमारे एरियाज में ममालिक में कब्जा, और फिर कॉलोनिज्म जो हमारे अंदर बनाई, हमारे मुल्कों को अपनी कॉलोनीज उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। जाहिर है कि वो आए तो सिर्फ सकाफत चेंज नहीं किया, हमारे नजरियात चेंज किया उन्होंने, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया उन्होंने, हमारे जो है अल्लाह भला करे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, हमारे रहन सहन को, हमारे चाल ढाल को। आज तक देखें जबान सीखना अच्छी चीज है, मैं 7 जबानें बोल सकता हूँ, 8वीं जबान कोशिश कर रहा हूँ सीखने की अल्लाह के फजल से, जबान कोई भी सीखे अच्छी चीज है, लेकिन किसी जबान की उबूहत और शान और शौकत के नीचे आदमी मरऊब हो जाए और वो न बोल पाने पे खुद को कमतर समझने लगे और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए, ये डेंजर है, ये साम्राज्यियत है, जहन अगवा कर लिए हैं साम्राज्यियत। हत्ता हम देखते हैं हमारे मीडिया के अंदर ड्रामे हों फिल्में हों मुख्तलिफ किस्म के जो भी मीडिया प्रोडक्शंस हैं उसके अंदर भी आप देखते हैं जोक में मजाक में या संजीदगी में ये फिक्रे लाए जाते हैं, उसको तो इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो कैसे पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो इंग्लिश तुम्हारी ठीक नहीं है, और ये हमेशा एक साइकी बनी है कि दूसरा आदमी कोई इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को या वर्ड्स को थोड़ा सा अगर बिगाड़ के बोल दे तो सामने वाला फौरन उठता है फखरियत तौर पर, नहीं ये लफ्ज ऐसा है जैसे कि कुरान की आयत गलत पढ़ ली उसने। और आप जिन सोसाइटीज में रहते हैं देखते हैं ये भी तो इंग्लिश वर्ड्स को यूज करते हैं ना अपनी जबान में, लेकिन क्या एज इट इज सेम एक्सेंट होता है या डिफरेंट होता है? इटालियन तो माशाल्लाह अच्छी खासी चेंज करते हैं, फ्रेंच उससे ज्यादा, फ्रेंच तो आर है ही नहीं, आर तो पढ़ते ही नहीं है, और भी लैंग्वेजेस के अंदर सेम टर्मिनोलॉजी सेम वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, लेकिन अपनी जबान में लेते हैं तो उसको अपनी शेप में डालते हैं अपनी शक्ल में। ये काम ईरानी करते हैं फारसी जबान में, ये काम अरबी करते हैं अपनी जबान में, कहते हैं जी ठीक है लफ्ज बाहर से आया है, हम अपनी जबान में क्या करेंगे उसको डालेंगे ताकि हमारे लबो लहजे के साथ यकसानियत पैदा करें, जब तक उसका अल्टरनेट नहीं आता। बस एक जो मसला आया हमारे पास साम्राज्य ताकतों का अमल दखल और कॉलोनिज्म का मसला, जिसमें हमने हमारी सोच बूझ रहन सहन पूरे सिस्टम को बदल दिया। तीसरा मसला उसके बाद शुरू हो गया उसी दौरान से, वो है नाम निहाद तरकी पसंद मूवमेंट्स। अब हमारे अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए मुस्लिम दुनिया के अंदर, वो उनके अंदर वही चीजें आ गई जो साम्राज्य ने उनको सिखाया था और उसको उन्होंने माशरे के लिए एक लाजमी जरूरी चीज करार देकर उसके अलमबरदार बन गए। वो साम्राज्य को हमने भगा दिया, अरब और अफ्रीकन्स ने फ्रांस को भगा दिया, अफ्रीका के एक दो मुल्कों में अभी भी फ्रांस की कदमे वहां पर हैं, वो भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नाइजर के अंदर हमने ब्रिटिश को भगा दिया, कहें से अमेरिकन्स को भगाया गया, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन उनके जो देसी अंग्रेज जिसको कहा जाता है एक टर्म जो इस्तेमाल करते हैं, उनके नारों और स्लोगन्स को लेकर चलने वाली मूवमेंट्स और अफराद जो उनसे मुतासिर हो चुके थे, बल्कि मैं कहूंगा मरऊब हो चुके हैं, वो बाकी रहे। उन्होंने इस सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस मूवमेंट्स को बाकी रखा हमारे पास। ये तीन बड़े फेज, हम छोटे छोटे फेज हो सकते हैं, तीन बड़े फेज हैं, यानी बनी उमैया से शुरू हुआ कदीम तारीख में, साम्राज्य जो कब्जे कॉलोनिज्म आ गई हमारी सोसाइटीज के अंदर, उसके बाद अब जो हम भुगत रहे हैं वो क्या भुगत रहे हैं, नाम नेहाद तरक्की पसंद तहरीकें, लेकिन अब चीजें जरा उससे ऊपर निकल गई, न्यू एम्पीरियालिज्म अब आ रहा है हमारे पास, नई साम्राज्यियत। अब साम्राज आके कब्जा नहीं करता, साम्राज सोचों पे कब्जा करता है, सिस्टम पे कब्जा करता है, वहां बैठता है, रिमोट पे चलाता है। बहुत मिसालें हैं, आप इनको बेहतर तरीके से जानते हैं। शाह है ईरान में, इतनी बड़ी हिस्ट्री रखने वाला मुल्क, कौन उनको शाह ईरान को चलाता था रिमोट कंट्रोल पे? मिस्र को अभी तक कौन रिमोट कंट्रोल पे चलाता है? सऊदी अरब को कौन रिमोट कंट्रोल पे चलाता है? ये सारी किंगडम से लेकर जितने भी हैं, ये सबको कौन चला रहा है रिमोट कंट्रोल पे? अपने रिसोर्स के होते हुए उसका डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं। जब उनको जरूरत पड़ गई तो वहाबियत बना दिया। अब वो अटलांटिक मैगजीन को तो मोहम्मद बिन सलमान या MBS ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली कहा, जी 90s की एज में जिनाब ये तो वहाबियत अमेरिकन की जरूरत थी अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को हटाने के लिए, तो हमने ये आइडियोलॉजी पेट्रो फाइनेंस के जरिए से प्रमोट कर लिया। अभी एक नया स्लोगन आ रहा है, कल बल्कि 2 दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट है कि हम एक नई तहजीब और सिविलाइजेशन को डेवलप करने जा रहे हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान की स्टेटमेंट है। उससे क्या मुराद है? अब नया आइडिया आया वहां पर, वहीं इंस्टीट्यूट चेंज हो गए हैं, उसके अंदर एक नई आइडियोलॉजी आ रही है, वो क्या है, दीनुल वसतिया, नई टर्मिनोलॉजी। क्या मतलब? मिडल दीन, मिडल दीन शायद दुरुस्त लफ्ज नहीं है, मोतदिल दीन। ये असल में टर्मिनोलॉजी तो कुरान की है, पहले भी तो स्लोगन कुरान के थे, उदू अलल कुरान, कुरान की तरफ लौटो, खालिस इस्लाम की तरफ लौटो, इस्लाह की तरफ लौटो, स्लोगन तो बड़े प्यारे थे। इससे मुराद क्या थी? वही जो मौला अली ने खवारिज को कहा, कलिमतु हक युरादु बिहिम बातिल, कहा कि ये नारा हक का लगा रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, बिल्कुल हाकिमियत अल्लाह की है, इसमें कोई शक नहीं है, हाकिम मुतलक खुदा की जात है, लेकिन जो तुम उससे माने ले रहे हो, उसका मतलब ले रहे हो, वो बातिल है, वो गलत है। सेम यहां पर है, दीन वसतिया, इसमें कोई शक नहीं है, इस्लाम दीन वसतिया, मोतदिल दीन है, न शिद्दत पसंदी है इसमें, न ही अफरात है, न तफरीद है। अब लेकिन उसकी क्या इंटरप्रिटेशन आप करना चाह रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन गलत है। जैसे कि पहले आपने प्योर इस्लाम का स्लोगन लगाया था, उससे वहाबियत दे दी आपने, क्लाशनकोव दे दिया, धमाके दे दिए, खुदकुश दे दिए, गले काटने वाले दिए, सीने फाड़ने वाले दे दिए, वहशी दरिंदे बना के हमें दे दिए, मुस्लिम उम्मा को भी और पूरी दुनिया को भी। अब आप एक नए तरीके से चीजें दे रहे हैं, मादर पिदर आजाद वाली दीन दे के आ रहे हैं आप, तो लिहाजा ये क्या है, ये जो नाम निहाद तरक्की पसंद सोचे मूवमेंट्स अफराद हैं, ये स्टिल हमारे पास मौजूद हैं। अब जो यहां से कुछ मैं तो चाह रहा था कि कल मैं इसमें एंट्री कर लूं, लेकिन मेरे ख्याल में मुनासिब है कि हम आज एंट्री कर लें, वो है अहले तशीह में सेकुलरिज्म का तसव्वुर कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। ये तो मैंने जनरल उम्मत मुस्लिमा की पिक्चर दे दी ओवरऑल, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, समझो कि उस सारी हिस्ट्री की बॉटम लाइंस दे दी आपको, न कि हम जा भी नहीं सकते हैं। अहले तशीह में बेनवान मजहब कभी भी सेकुलरिज्म का तसव्वुर किसी भी तारीखी हिस्से में मौजूद नहीं रहा है, हमेशा ये सेकुलरिज्म के मुकाबले में खड़े रहे, चाहे इसकी कोई भी शेप हो, कोई भी शक्ल हो। मसलन बहुत एहतियात के साथ मैं जुमले इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी की दिल आजारी इसके अंदर ना हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सिचुएशन उम्मत मुस्लिमा ने फेस किया, उसको एहले तशी के मजहब के इमाम यानी आले रसूल ने शरी हैसियत नहीं दी, उसको सिस्टम को यानी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की उससे, क्योंकि सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो रही थी, बात पॉलिटिकल चेंजिंग की नहीं थी। अगर पॉलिटिकल चेंजिंग के लिए कोशिश होती, अल्टीमेट रिजल्ट ऐसा आना था कि पूरी जो सोसाइटी है वो तबाह होने वाली थी, तो एक बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को एफोर्ड किया, बर्दाश्त किया, इसका मतलब ये नहीं कि शरी हैसियत दी उसको, बिल्कुल शरी हैसियत नहीं दी है। अब माफ करना, मैं जा रहा हूं नाहजुल बलागा में, सिर्फ इस हिस्से को समझने के लिए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो मालिक अश्तर को खत दिया है, एक डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल रियासती स्टेट डॉक्यूमेंट था, जो क्योंकि गवर्नर जा रहे हैं इजिप्ट मिस्र के अंदर, एक तवील हिस्ट्री रखने वाला मुल्क है जिसकी एक रिच कल्चर रखता है, मुख्तलिफ हुक्मरान आए, जो खत के अंदर भी मौलाना ने मेंशन किया है, मालिक तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें देखी हैं, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम देखे हैं, वो एक्सपीरियंस रखते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो उनके दरमियान तुम रूलिंग करने जा रहे हो, तो तुमने इन 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 चीजों का ख्याल रखना। उसके बाद उससे के अलावा मौला एक चीज की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि मालिक अभी तक दीन के साथ क्या होता रहा, इन्हें पिछले इस सारे अरसे में दीन की हुक्मरानी थी हमारे पास या नहीं थी। विथ रेस्पेक्ट फरमाते हैं मालिक, इन्ना कद कान हाज़िह दीनू, कह रहे हैं कि ये जो दीन था शर पसंदों के हाथों में असीर था, असीरन फी ऐदिल अशरार। वर्ड्स बहुत खतरनाक, का शर पसंदों के हाथों में ये दीन कैदी बना हुआ था। ताबीर देखें ना, नाजुक बलागा है, अमीरुल फसाहा वल बलागा है, इन हाजी दीनी कद काना असीरुन, बतहकीक मालिक ये दीन हमारे यानी मौला के खिलाफत के आने से पहले तक ठीक एक सिस्टम रूल कर रहा था, लेकिन उसकी रियलिटी ये थी दीन कैद हो चुका था, एक्चुअल दीन कैद हो चुका था। अच्छा, कैद होने के बाद क्या हो रहा था, युअमलु बिहिल हवा, मैं नाजुल बलागा पढ़ रहा हूं, मालिक अश्तर वाले खत का हिस्सा, इससे कहा दीन को टूल्स बनाया था अपनी पर्सनल ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, वही यतलुबु बिहि दुनिया, और इस दीन को टूल्स के तौर पर, करेंसी के तौर पर है, एक वैल्यू चीज के तौर पर यूज कर रहे थे अपनी दुनिया को आबाद करने के लिए। समझ रहे हैं, अंदाजा कर रहे हैं, ये नहीं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कोई जंग नहीं की है, कोई तलवार नहीं खींची, गाइड भी किया, हेल्प भी किया, सपोर्ट भी किया है, क्योंकि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना था ना उस सिस्टम को। सिस्टम की अपोजिशन में है मौला अली अलैहिस्सलाम, नहीं एक्सेप्ट करते उस सिस्टम को, इलाही निजाम नहीं कहते उसको, मशरी कोई लिजिटिमेसी नहीं दे रहे हैं उस सिस्टम को मौला अली। एट द सेम टाइम कहते हैं अगर हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी डिस्ट्रॉय होने वाली है, सो ये बिग रिस्क है, इसको हमें यहां नहीं करना ये काम। इसके अंदर कई मैसेजेस हैं जो हमें मौला की सीरत और कलाम से समझने का है। अब आपको अंदाजा हो गया, किसी भी बनी उमैया के साथ तो खुली अपोजिशन रही है उसके बाद, ये वो पीरियड है ना जिसके ऊपर बातें हो सकती हैं, मौला अली खामोश रहे 25 साल सुकूत बरा, तो मैं मौला अली खुद एनालाइज करके बता रहे हैं कि 25 साल खामोशी के पीछे बिहाइंड द सीन क्या चीजें थी, वगैरह 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 वगैरह। पता चला कि यहाँ कभी भी उस सिस्टम को जो गैर इलाही है, शियों ने कभी कबूल नहीं किया, ना किसी शिया इमाम ने एक्सेप्ट किया, मजबूरन उनको सिस्टम में रहना पड़ा, अलग बात है। उसके बाद इमाम हसन अलैहि सलाम, आपको मालूम है कि क्या सिचुएशन वहां पर हो गई, इमाम हसन अलैहि सलाम ने कोई माविया इब्ने सुफियान के साथ अगर एक पीस एग्रीमेंट साइन किया ताकि सोसाइटी में कोई कियास क्रिएट ना हो, लोग मारे ना जाएं, सिचुएशन भी ऐसी थी कि देख रहे थे कि इमाम हसन अलैहि सलाम अगर मैं कोई सख्ती करने की कोशिश करूंगा तो मेरे साथ लोग नहीं होंगे, लोग बिक रहे हैं यहाँ पर, लोग जो है ना आसानी के साथ सुबह शाम ईमान की बोली लगी हुई है यहाँ पर, जो जितना बोली डालेगा उसका ईमान इतना जल्दी बिक जाएगा, तो मेरे साथ तो कुछ पीछे खड़े, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो अल्टीमेट कोई शहादत का रिजल्ट भी नहीं आएगा, जैसे करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का रिजल्ट आया, रिजल्ट मिला, नतज मिले, ऐसा रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो इमाम ने कहा पीस एग्रीमेंट जरूरी है, पीस के जरिए से मद्दे मुकाबिल की सच्चाई खुल जाएगी, लोगों को पता चलेगा ये इस्लाम का कितना बड़ा दावेदार है, कुरान का कितना बड़ा हामी है, रसूलुल्लाह का कितना बड़ा हामी है, कुरान की निफाज का कितना बड़ा हामी है, क्या वो वाकई खिलाफत इलाहिया और इस्लामिया और जानशीन रसूलुल्लाह के निफाज की बात कर रहा है, या वो कहता है मेरा अपना इकतदार, मेरी कुर्सी, मेरी रियासत, मेरी सियासत, दीन का कोई मुझे लेना देना नहीं है। इमाम हुसैन अलैहि सलाम तो खुली चीज है, वाजह है, नतीजा क्या निकला, बनी उमैया के अबू सुफियान के बेटे माविया इब्न अबू सुफियान तक तो मसला फिर भी खिलाफत के टाइटल के साथ रहा। जाहिरी तौर पर इस्लाम की बातें होती थी, जुमा कायम होता था, नमाज जमात कायम होती थी, रोजे की पासदारी होती थी, हज के लिए काफिले जाते थे, हैं कुछ जस्टिस सिस्टम के तौर पर भी, इस्लामी जस्टिस सिस्टम के तौर पर भी कुछ ना कुछ चीजें हो रही होती थी। हकीकत क्या है अपनी जगह, लेकिन जाहिरी तौर पर कुछ ना कुछ तो थी ना एक्टिविटीज। लेकिन यजीद आया तो खिलाफत और मुलुकियत नहीं रही, अब सल्तनत बननी शुरू हो गई। मौलाना मोदी की किताब आप उठा के देखें, खिलाफत और मुलुकियत, उसके अंदर वो यही बातें कर रहा है। तो कुछ शिया एनालिसिस नहीं है, मौलाना मोदी भी यही कह रहे हैं, अरब राइटर्स भी यही कहते हैं। लिहाजा नतीजा अल्टीमेट क्या हुआ, उम्मत मुस्लिमा के एक बड़े हिस्से में मजहब और सियासी कियादत में नामहसूस तरीके से फासले का तसव्वुर आ गया। यहां तक कि अहले सुन्नत ने ऐसे फतवे दिए जो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, और टाइम टू टाइम पाकिस्तान में डिक्टेटर्स इसको यूज भी करते हैं। जो लास्ट टाइम इसने यूज किया है ओपनली, वो जनरल जियाउल हक है, अगरचे मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी। वो ये कंसेप्ट आ गया, अगर कोई आदमी पावर ताकत लश्कर के जरिए से कू करके भी कब्जा कर लेता है किसी स्टेट के अंदर, तो बस ठीक है, वो क्या है, वो वली है, वली अमर है, वली अमर है। अच्छा, सऊदी अरब में जो बादशाह है उसको उसकी अवाम क्या कहती है, आईन के अंदर क्या लिखा है, वली अमर। ये कौन सा टाइटल है वली अमर, सऊदी कोई टर्मिनोलॉजी है? नहीं, ये खुदा की टर्मिनोलॉजी है, ये कुरान की टर्मिनोलॉजी है। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहू उलिल अमर की बात हो रही है, वली अमर की मुखालिफत हराम, वली अमर की मुखालिफत नाजायज। यही चीजें तो हर जगह मुस्लिम दे। अभी तक ये अगर कोई जबरदस्ती को भी करे ना, मार्शल लॉ भी लगाए, डिक्टेटर बन जाए, नो प्रॉब्लम। मकतब शिया कहता है कू नो, बिल्कुल किसी डिक्टेटरशिप को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, ना हम खिलाफत को मानते हैं इस मानी में जो गुजरा हिस्ट्री के अंदर, ना मुलुकियत मानते, सल्तनत मानते हैं, किसी डिक्टेटर किसी को नहीं मानते, किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक इमाम मासूम का दौर था तब तक तो 100% रोज रोशन की तरह यह बात क्लियर थी, असर गैबत के अंदर भी बात वही है, हम नहीं मानते किसी डिक्टेटर। यानी प्रिंसिपल्स, हमारे पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ना हिस्ट्री में कभी हमने किया, हमने किसी डिक्टेटर का साथ नहीं दिया कभी भी हिस्ट्री के अंदर, वगैरह इतने अब्बासी, उमवी, मरवानी, अब्बासी, उसके बाद सल्तनत उस्मानिया गुजरी है, फिर जो है मुगल आ गए हैं। कौन से शिया उलमा ने इनको प्रोटेक्ट दिया है, कौन से शिया उलमा ने इनको एक्सेप्ट किया है? तारीख के किसी हिस्से में अगर किसी एक जगह में किसी कदरे बेहतर बादशाह को दीन के मसलहत की खातिर उसके साथ अगर थोड़े खड़े रहे, उसको लिजिटिमेसी नहीं दी, उसको शरी हक नहीं दिया, उसको शरी वली अमर नहीं कहा, शरी कोई हैसियत और टाइटल नहीं दिया उसको, लेकिन कहा जी आदिल थोड़ा सा बेहतर बादशाह है, जैसे सफवी दौर था ईरान में, जहां से ये सारी आजादारी फैली है, जहां से ये जुलूस निकालने का हुनर हमने सीखा है, जहां से ये अलम और ताजिए और ये सारी चीजें सफवी दौर के अंदर, क्योंकि स्टेट शिया बंदे के हाथ में थी और वो इन मामलात में काफी उनके अंदर अच्छी सोचें थी, तो उसने स्टेट को यूज करके ये चीजें प्रमोट कर ली, जो आज हमारे पास ये आजादारी की शक्ल में है, और बहुत सारी और चीजें, बहुत सारी दुआओं की किताबें उस दौर में लिखी गई हैं, कंपाइल की, क्योंकि स्टेट फंडिंग करती थी उसके लिए। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना चाहिए कि सफवी दौर में शिया किस तरह पनप गए, कैसे आगे निकले, वगैरह वगैरह। सलवात बर मोहम्मद वाली।
अच्छा
बस मकतबे अहले बैत में, क्योंकि हमारे पास रूहानी, इल्मी, मजहबी और सियासी कियादत एक ही है, जो हमारा सियासी लीडर होगा वो हमारा दीनी पेशवा भी होगा। हमने ये नहीं कहा गदीद में, ये नहीं कहा पैगंबर ने कि देखे मौला अली आपके रूहानी पेशवा हैं, आपके मानवी और मलकूती तकवीनी पेशवा हैं, सियासी लीडर कोई भी आए कोई बात नहीं है, नो 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 नो। ऐलान गदीर में जो विलायत का ऐलान हुआ है वो कंप्लीट विलायत है, तकवीन भी है तशरी भी है, ये जहन में रखना है, विलायत तकवीनी विलायत तशरी, ये टर्मिनोलॉजीज आगे हमने आगे की मजालिस में बहुत डिस्कस करना है इसके ऊपर, इसके मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर भी हम चले जाएंगे। अहले बैत ने हमेशा जो जिस चीज को फॉलो किया, जो चीज हमें एजुकेट किया है आले रसूल ने कुरान और इतरत के जरिए से, वो ये चीज मकतब तशयो में दीनी कयादत और सियासी कयादत में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर हमने मौला अली अलैहि सलाम को मौला अली माना है तो मौला अली को तकवीन में भी मौला माना है, मौलाए कायनात भी हैं, मौलाए कुल्लु मोमिनिन व मोमिना भी हैं, मौलाए सियासत भी हैं, मौलाए हुकूमत भी हैं, मौलाए इक्तिसाद भी हैं, मौलाए कजावत भी
मोहम्मद सलावा
हैं। वाह मोहम्मद अल्लाह अकबर
सलावा
अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अल्लाह। बस देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि गदीर में जिस विलायत का कंप्लीट ऐलान था उसके एक बड़े सेक्टर को हमने हिस्ट्री में 250 साल का इसमत का पीरियड बनता है तकरीबन, ऑलमोस्ट 1-2 साल ऊपर नीचे कम करके 250 साल के मासूम का पीरियड है ये, पैगंबर खुदा से लेकर 11वें इमाम तक और फिर गैबत सुगरा तक, तकरीबन 250 साल में हमें कहें वो विलायत तशरीई नजर ही नहीं आई, क्योंकि जालिमिन के पास कंट्रोल रहा, पॉलिटिकल कंट्रोल, रियासत और सियासत क्या है उन लोगों के हाथ में रहा जो दीन और सियासत की जुदाई के कायल थे। प्रैक्टिकली शिया आइडियोलॉजी और मेंटेलिटी स्लोली 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 ये तसव्वुर जा गया, अच्छा ऐमे मासूमीन तो मलकूती हस्तियां हैं, सियासत से क्या करना, रियासत से क्या करना। नतीजे नहीं निकलता है कि आज मुझे हैरानगी होती है, नतीजा ये निकला अल्टीमेटली असर गैबत का पीरियड उसमें ऐड होने के बाद, अब हमारी सोसाइटी में कुछ लोग कहते हैं हमारा सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें आजादारी करने दो। ला हौला वला गदीर की मुखालिफत शुरू कर दिया खुद, तुम कैसे गदीर ही हो, ऐलान गदीर के खुद इनकार कर रहे हो, सारा झगड़ा ही के फिर हक अहले बैत क्या है जो छीना गया है, हक के मौला अली था क्या जो छीना, मौला अली से इल्म छीना है, मौला अली का ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार वाली शुजाअत छीनी किसी ने, मौला अली का बाब मदीनतुल इल्म होना किसी ने डाका मारा उसके ऊपर, जुल्म किया उस हवाले से, ये वो चीजें हैं जो अटूट है छीनी नहीं, ये तकवीन है, वो मौलाए कायनात है, जर्रे जर्रे पर हुक्मरानी रखते हैं, कायनात उसके इशारे पर चलती है क्योंकि खुदा ने ये जो है सलाहियत अता की है, इन्नमा वलीकुम अल्लाह के ज़ेल में, इसलिए हम मौलाए कुल कहते हैं, मौलाए कायनात कहते, क्यों हम इस नजरिए के कायल हैं तकवीन के अंदर कि ये आले मोहम्मद ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि अगर ये जमीन पे ना हो तो जमीन और आसमान टिक ही नहीं सकते, लौलल हुज्जत लसाखत अल-अर्ध बिअहलिहा, अगर ये हुज्जत खुदा नहीं हो जमीन रह ही नहीं सकती, फना हो जाएगी, ये नाबूद हो जाएगी, हुज्जत खुदा का, हिदायत खुदा का, नूर खुदा का, रहम खुदा का, रहमानियत खुदा का, जमीन में 24 आवर बिल्कुल ऐसे नाजिल होते रहना जरूरी है, और ये वजूद ये मुकद्दस हस्तियों की शक्ल में है। वो हम थोड़ी देर पहले भाई के साथ बात कर रहे थे, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, जी अव्वल है, एक खल के अव्वल है, ये आखिर भी है अव्वल भी है, सब कुछ फाना हो सकता है, हुज्जताए खुदा रहेंगे, खुदा की हुज्जत खत्म होने का मतलब कायनात का फना होना है। मैं यहीं से एक छोटा सा नुक्ता साइड पे हम जरूर जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन टच है, अर्ज करके जाता हूं, ये जो हम हर शब कदर में कहते हैं फरिश्ते नाजिल हो गए आसमान से हैं, तनज़्ज़ुलुल मलाइका रूहुल अमीन आ गया, मलाइका नाजिल हो गए सूरह नास के अंदर, ये मलाइका रूहुल अमीन किधर जाते हैं, किधर नाजिल होते हैं, ये और मुकद्दरात को तमाम मुसलमान मानते हैं ना, शबे कदर के दिन इंसान की तकदीर आती है। ये मुकद्दरात लेके किसके पास आते हैं? हर आदमी के पास आते। आपके पास आया है कोई फरिश्ता? आप भी 40-50 साल के, मैं 50-51 साल का हो गया, मेरे पास तो कभी नहीं आया कोई फरिश्ता। मैंने कोशिश की है, जब से होश संभाला है, एक भी शबे कदर की रात को मिस नहीं किया है। मैं तो कभी फरिश्ते को आते नहीं देखा। ये फरिश्ते किधर आते हैं फिर? कौन बासलाहियत हस्ती है जो जिब्रील अमीन और उसके पूरे वफद का इस्तकबाल कर सकता है? जमीन में कौन है? अल्लाह के रसूल प्यारे हो गए हैं, तो कौन है जमीन में वैसी हस्ती? भाई कोई तो होगा, ढूंढो इसको। अहले तशीह के पास क्लियर जवाब है, हमारे अहले सुन्नत बरेलवी भाइयों के पास भी क्लियर जवाब है। वो इस जमीन में खुदा की हुज्जत है जिसके पास फरिश्ता आता है, जिब्रील अमीन आता है। वो 12वें इमाम, इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम के फर्जन हजरत इमाम मोहम्मद महदी हैं। अल्लाह बस जो है, ये क्यों, ये कौन और मकान के भी मौला है, जर्रा जर्रे के भी मौला है। हम समझते हैं कि जैसे आसमान, जमीन, चांद, सितारे, दरिया, ये पहाड़े, ये कुछ बड़ी चीजें हैं ना बाबा। खुदा का नुमाइंदा इन सबसे बड़ा है, खुदा का नुमाइंदा इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये जर्रे और छोटी छोटी सारी चीजें उसके कब्जे कुदरत में खुदा ने दिया है। वो चाहे तो पहाड़ों को यहां से वहां कर दे, वो चाहे तो दरियाओं को के पानी को रोके, वो चाहे तो मट्टी से उसकी खासियत को छीने। नहीं मानते हो तो हदीस किसा की तरफ जाता हूं मैं। हदीस किसा में क्या फरमाया? इन्नी मा खलकतु समा मबनी वला अर्द मदही वला कमरा मुनीरा वला शमसम मुदिया वला बहर यजरी वला फुलक यसरी इल्ला लि अजलिकुम वली मोहब्बतिकुम आगे जाके कहते लि मोहब्बति हाउला अल्लदीन हुम तहतल किसा। खलास हो गया पानी सब कुछ। और मिसालें दे दूं, चौथे इमाम इमाम जैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन अलैहि सलाम ने बाम सजानी।
अपना
अपना तारुफ कराते हुए कैसा तारुफ? भाई मुझे कहे तारुफ कराओ, दुनिया के किसी भी आदमी को कहे जी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, क्या बोलेगा? जी मेरा नाम ये है, मैं फलां का बेटा हूं। आगे जनाब बताए तो कहता है मेरे दादा का नाम ये था। उससे आगे भी शजरा पता है तो बताएगा ना, मेरे उसका ये है। अच्छा मेरा ताल्लुक जो है फला इलाके से है, मैं फला। लेकिन कोई ये तो नहीं कहता ना कि मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ, मैं केटू का बेटा हूँ, मैं लाहौर का बेटा हूँ, है मैं इस्लामाबाद का बेटा हूँ, कोई कहता है? नहीं कहता है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। चौथे इमाम पता है कैसे तारुफ करवा रहे हैं? अनबनु मक्कतु वल मीना, मैं हूं मक्के का बेटा। है अनबनु मक्कतु वल मीना, मैं मक्का और मीना का बेटा। अनपनु जमजम व सफा, मैं जमजमो सफा जिसके पीछे दौड़ते हो पीने के लिए, सफा और मरवा में जाके हज के फराइज अंजाम दे के दौड़ते हो, सही करते हो। खाने काबे का बेटा मैं, यानी मेरे वजूद से जमजम जमजम है, सफा और मरवा है, मुकद्दस है, मोहतरम है। खाने काबा ये जो पत्थरों का मकान है, ये हुज्जत खुदा की वजह से मुकद्दस और मोहतरम है, मगर इससे पहले यहां पर भूत थे सारे के सारे। यार अल्लाह
मोहम्मद
सल्ले अला मुहम्मद। अब मैंने थोड़ा आपको अंदाजा लगाया कि तकवीन से मुराद क्या है। कायनात में कंट्रोल दिया है, क्यों? खुदा हुज्जत खुदा है, सिर्फ इमामतो रहबरी और कयादत और रहनुमाई इंसानों के लिए नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे रहनुमाई हासिल करते। आपने वाकयात सुने हैं, वो मौला अली अलैहि सलाम के पास एक हिरनी आई, कभी पैगंबर खुदा रसूल हबीब हबीब खुदा के पास कोई जानवर आया, उसने शिकायत की कि देखे वो शिकारी ने मेरे साथ ये ज्यादती की है। शिकारी को बुलाया, कहा कि भाई देखो तुम इसे छोड़ दो, ये अपने बच्चों के दूध पिलाएगी, बड़ी हो जाएगी, फला फला, फिर ये इसका वादा है कि वो तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि शिकार करना इंसान का हक रखा है खुदा ने। तो इस तरह ना जिन्नात के मसाइल आ जाते थे कभी कभी, ये क्या था? या मसलन हुजूर पाक के सामने कुछ लोग आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप अल्लाह की जानिब से आए? हाँ। नहीं, वो तो आप अब्दुल्ला के बेटे नहीं है, यतीम पले बड़े थे, हमारे सामने बड़े हो गए गली कोचू में, अभी आप कह रहे हैं मैं रसूल हूं? आप रसूल हम क्यों मानेंगे? आप और हम में फर्क क्या है? आप भी खाते हैं पीते हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, इसी तरह जिस्म है आप हमारा, आपके माँ बाप का भी हमें पता है, हम आपको रसूल क्यों माने? कह रहे देखो, मैं खुदा का नुमाइंदा हूं, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास इल्म है, हलम है, मैं सब कुछ अव्वल और आखिर जानता हूं, वगैरह चीजें समझ, इंटेलेक्चुअल बातें समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, आप रसूल हैं, वाकई अल्लाह के हैं, आपके पास बड़ी सुपर पावर होगी, आप इस दरख्त को कहें ना आपके पास आ जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा चलो शायद ये मोटी अकल वाले हैं, इनकी समझ में आए, को दरख्त को इशारा कर दिया, आगे आ गया पूरा दरख्त। कहा हाँ ये तो कुछ अजीब सा हो गया। कहा हमें अभी भी यकीन है, वो इसको वापस भेज दें उधर। कहा वापस, इशारा कर दिया, वापस चला गया। फिर भी शक में मुब्तला है, इसको क्या है, फिजिकल फिफ्थ सेंस के लिए मुआवजा किया है, वगरना अकल है इंसान के पास, दलील से मानना चाहिए, आर्गुमेंट से, ना कि मौजूदे और शोबेदों से। कमजोर जहन के लोग मौजूदे और शोबेदों के पीछे जाते हैं क्योंकि उनकी बात समझ में नहीं आती, जैसे उन लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। कह रहे नहीं यार रसूल, इज इट पॉसिबल कि आप आधे दरख को लाएं, आधे को वहीं पर रखें? अजीब है, इतनी मोटी अकल है इन लोगों की। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, आधा दरख्त आया, फिर भी ईमान नहीं लाए। कहा हाजा साहरुन मुबीन, ये तो बहुत खुला जादू है जो आप कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
अच्छा
बस अजीजो, वाज विलायत तकवीनी ऑलमोस्ट वाजे हो गई है, गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि असल मौजू नहीं है, वगैरह गहराई में कुछ आयात के जरिए से डिस्कस हो सकती है। अगर एंड ऑफ अशरे के करीब करीब कोई वक्त मिला तो मैं वापस लौट आऊंगा इस मौजू की तरफ। अगला इसका हिस्सा बनता है, बस यहाँ पे मैं आपका कल के लिए मैं रखूंगा बाकी हिस्सा, बस कुछ मैं पॉइंट्स बता के, वो विलायत तशरीई है, आइन के साथ, तशरीई शरीयत से निकला है, शरीयत यानी कानून। एक तो ये विलायत है जो अल्लाह रसूल और आले रसूल यानी चारदा मासूमीन के पास है, मौला यहां पर है, मौला है कुल कायनात है, दूसरा मौला है, हाकिम है, हुक्मरान है। कौन हुक्मरान होगा जी? या रसूल होगा या वो होगा जिसे अल्लाह ने रसूल के जरिए से बताया है कि इसको हाकिम होना चाहिए, जिसके पास इल्म में कोई कमी नहीं है, जस्टिस और अदालत के फैसले करते वक्त जो है बगले ना जान के मैं क्या करूं, ये मसला अजीब सा आ गया, ये तो अजीब सा केस है, इसको कैसे हल किया जाए, इस तरह की कंफ्यूजन का शिकार ना हो, कुरान को बेहतर समझता हो, बल्कि खुद नातिक कुरान हो, खुद बोलता कुरान हो। मैंने पिछले साल ये वजाहत की है, बोलता कुरान से मुराद क्या है, अब चाहते हैं तो मैं वजाहत कर सकता हूं, इसको मतलब क्या है। फरमाया अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, जिधर जिधर अली चले जाते हैं हक पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि हक की हकीकी माने अली से ही पैदा होगी, हक अपना मुस्तकिल कोई आइडेंटिटी नहीं रखता, हक को अगर अपनी आइडेंटिटी पानी है तो साहेब हक जो मौला अली है उसके पीछे जाना होगा, वाजे है ना। कुरान और मौला के बारे में जो फरमाया कि कुरान नाती का मतलब क्या है, अगर इस कुरान मजीद को हम किसी जीते जागते इंसान कामिल व अकमल में डालेंगे तो सिवाय मौला अली के कोई और इंसान में डल ही नहीं सकता ये कुरान यार। और
मोहम्मद
वाह सल्ले अला मुहम्मद। और अगर मौलाए कायनात अबू तालिब के बेटे को बाब मदीनतुल इल्म को अगर हमने किसी किताबे मुकद्दस मुबीन मुतहर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें सिवाय कुरान के कोई और किताब बन ही नहीं सकता। ये है अली माल कुरान, कुरान जो कुछ कुरान में अली के पास है, जो कुछ अली के पास, ताजा दोनों में एक फर्क है, एक कुरान बोलता है दूसरा कुरान खामोश है। खुद फरमाते हैं नाजुल बलागा में दालिकल कुरान, कहते तो ये अल्लाह की किताब, खुद तो बोलती नहीं है, मैं इसका तर्जुमान हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कुरान के अंदर क्या है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें एजुकेट करूंगा, टीच करूंगा, बताऊंगा। अब इसको हुक्मरान होना चाहिए, ऐसी हस्ती को माशरे की बागडोर लेनी चाहिए, या कहे नहीं मसला नहीं है, इक्तदार उसके पास जाए, मौला अली रूहानी पेशवा है, एक नई टर्म आई है ना हमारे दिमाग में डाली, रूहानी पेशवा, सियासी पेशवा, अल्लाह अकबर। इस्लाम में जो सियासी पेशवा है वही रूहानी पेशवा होता है। यही तो प्रॉब्लम थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये मूवमेंट शुरू कर दी, मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजम, तो उस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यही आ रही थी कि लोग कह रहे थे कि चले अगर बनी उमैया के हाथ में इक्तदार रहे तो क्या फर्क पड़ेगा, नवासे रसूल आप तो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हैं, आपकी हस्ती तो ये है सफीनतुन नजात है, आपकी हस्ती तो ये है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया इमामानी कामा औ कादा व इला आखिर ही। मसला नहीं है सियासत उनके पास रहे, रूहानियत आपके पास हो, दुआ वो मस्जिद और इबादत आपके पास हो, रियासती सियासती खजाने ये वो हल्ला गुल्ले उनके पास, ये क्या कंसेप्ट है भाई। जो सालेह होगा, कुरान ने कहा है हमने सालेह लोगों को जमीन का वारिस बनाया है, ना सालेह को नहीं, जिसका करेक्टर ठीक, जिसका इल्म ठीक, जिसका अमल ठीक, जिसकी गारंटी या रसूल दे या खुदा दे, तो उसको हमने बनाया है। यही सबसे बड़ा, इसीलिए आप देखते हैं नवासे रसूल जिगरे गोशे अली व बतूल मदीने में खुलेआम अनाउंस करे, छुप के नहीं निकले, गुमनाम रास्तों से आप तशरीफ नहीं लाए, खुली आम जो मरकजी शाहरा है जहां से सारे काफिले आते जाते हैं, सारे मुसाफिर आते जाते हैं, उस जगह से खुले आम बेबांगे दोहल पूरे मदीने में खलीफा के दरबार में, मिसली ला युबा ये मिसला, मुझ जैसा उस जैसी कभी बेअद नहीं करेगा, जो जो भी हुसैनी होगा कयामत तक यजीदी सोच फिक्र कल्चर सकाफत की कभी बेअद नहीं करेगा, सरेंडर नहीं करेगा, ये खुलेआम कहते हुए मदीने से निकले इमाम हुसैन अलैहि सलाम। कितने लोग साथ निकले, अरे मदीना असहाब से भरा हुआ है, चार या पांच असहाब शहीद हुए, असहाब रसूलुल्लाह चार या पांच है जो इमाम हुसैन अलैहि सलाम के जिन्होंने साथ दिया और शहादत पाई है, मदीना तो भरा हुआ है। मक्के में 4 साढ़े 4 माह कयाम किया मौला ने, शहीद शोदा अलैहि सलाम ने खुतबे दिए, खतूत लिखे, लोगों से मुलाकातें की, काबे के तवाफ के लिए, यहां तक कि हज का सीजन शुरू हो गया वहां से करबला के, कितने काफले में कितने हजारों लोग शरीक हैं, लाखों लोग शरीक हैं, यमन से लोग दौड़ पड़े हैं, 4 महीने में तो पूरे मुस्लिम दुनिया से यहाँ कुस्तुंतनिया और तुर्की से लोग पहुंच सकते हैं वहां पर, इंडिया से और हमारे बरसगीर से भी लोग आ सकते थे 4 महीने के अंदर, तो इतने पीरियड दिया पूरी उम्मत को, पूरे इंसानों को, कहा कि देखो मैं निकला हूं कयाम के लिए, इलाही निजाम के लिए, तुम्हें पूरी मौका और पूरा फुर्सत देता हूं, 4-5 महीने टाइम है आ जाओ मिल जाओ मेरे साथ। नहीं, सुबह निकले तो कौन है, टोटल 135 या 133 बनते हैं, जिसमें से 72 जो है वो सर हैं जो यजीद के दरबार में लेकर गए थे, तो इसलिए 72 का आदत मशहूर हो गया, अगर ये बात रिवायत में 72 भी कहा है, लेकिन 100 कुछ बनते हैं टोटल, अगर शोहदाए करबला को गिने 100 कुछ लोग आ गए। क्यों खुद फरमाते हैं, खुद ये क्यों का जवाब खुद इमाम ने दिया है, बड़े दुख भरे लहजे में सानिया जहरा ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा खेमे के पास खड़ी थी शब आशूर, इमाम आले मकाम ने चराग गुल करके हुज्जतें तमाम की थी, असहाब ने अपनी वफा का यकीन दिलाया था, इमाम खेमे से बाहर निकले, देखा कि बहन ज़ैनब खेमे के पास बड़ी इस्तराब में बड़ी परेशानी में बहन ज़ैनब खड़ी है, इमाम आली मकाम करीब आते हैं, सलाम करती और कहती है भैया लश्कर के लश्कर आ रहे, फौजों पे फौजे आ रहे, क्या आपकी मदद के लिए भी कोई आने वाला है। कहते हैं बहन ज़ैनब जो भी नजात पाना चाहेगा वो पहुंच जाएगा, लेकिन किसी लश्कर ने मेरी मदद के लिए नहीं आना, इस आलम में सुबह आशूर होती है, सुबह आशूर होते ही खुतबा देते हैं, उस खुतबे के अंदर बड़े दुख भरे अंदाज से कहते हैं अलौ तरौना अन्नल हक्क ला यौमिल बिह व अन्नल बातिल ला यतनाहा अन्हु, फिर फरमाते हैं अन्नासु अबीदिद दुनिया, ओ लोग दुनिया के गुलाम बन गए हो, आले रसूल को नवासे रसूल को नजात की कश्ती को अकेले छोड़ रहे तमाशा देख रहे हो, तुम दुनिया के गुलाम बने हो, व दीन उलैकुन अला अलसिनतीहिम, ये जो दीनदारी की बातें करते हो ना सिर्फ जबानी है अंदर से नहीं है, باہر سے یا رسول اللہ یا اللہ یا آل رسول کہتے ہو، اندر سے نہیں ہے ایمان، اندر نہیں موجود تمہارے اندر. لما يدخل الايمان في قلوبكم فاذا محسوا بالبلاء قل الديانون، دین کی وجہ سے اگر تمہیں تھوڑی مشکلات سہنی پڑے نا تو دیندار تو بہت تھوڑے سے رہیں گے، وہی تھوڑے سے تھے امام کے ساتھ. ایزو میں مصائب پڑھ رہا ہوں، لیکن جیسے عرض کیا مصائب کے اندر موجود مطالب کی طرف اشارہ کرنا ہے. میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے مسجد نبوی لے جانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی توجہ کر لیجیے گا میری طرف، کیونکہ یہ مسجد نبوی کے سین کو سمجھے بغیر میرے مولا اور نواسے رسول کے اس آخری لمحات کی جو کیفیت، جو شمر ملعون سے مخاطب ہو کر نواسے رسول نے، جگر گوشے علی و بطول نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں نا، وہ ہم پوری طرح سمجھ نہیں پائیں گے. دیکھیں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول انتہائی با ادب تھے، اپنے نالین مبارک کے بھی نام رکھے تھے، نہیں کہتے تھے میری جوتی دے دو، کہتے نام رکھے تھے میرے فلاں دے، نالین مثلا ان سے ایک نام یہ تھا، اپنے اباؤں کے نام رکھے تھے، اپنے گوڑوں کے نام رکھے تھے، اتنے ادب تھے کہ ہر چیز کا اللہ کے رسول نے نام رکھا، یعنی بے ادبی ادب کے اس لیول پہ تھے. اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ ان قالا خلق عظیم، آپ خلق عظیم ہیں، یعنی خلق عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے، آپ ہی ہیں اصل میں. خلق عظیم کو معنی پیدا کرنا ہے تو وہ آپ کی ذات سے ہی ملیں گے اسے، ایسا نہیں. بعض لوگ ہوتے نا کہ وہ صفت آ کے اسے لگ جاتی ہے نا، مثلا کوئی آدمی جیسا کہ کہتے ہیں یار یہ آدمی بد اخلاق تھا، آج کل با اخلاق ہو گیا ہے، مطلب کیا یہ صفت پہلے نہیں تھی اب آ گئی. رسول اللہ کو جب کہہ رہا ہے کہ آپ خلق عظیم، انک اعلی خلق عظیم، ایسا نہیں کہ رسول اللہ میں وہ صفت آ گئی ہے، نہیں، رسول خود ہی ہے ہی خلق عظیم. اب یہ اللہ کے حبیب میں اتنے ادب و آداب کا خیال رکھتے ہیں، مسجد نبوی میں ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سارے دروازے بند کیے گئے تھے جو مسجد کی طرف شروع میں کھلتے تھے، حکم آیا تھا خدا کی طرف سے کہ آپ مسجد کے اندر کھلنے والے دروازے بند کر دو، یہ گھر نہیں ہے لوگوں کا کہ یہاں آ کے اٹکلیاں کریں، مسجد ہے، اس کا تقدس ہے، سوائے مولا علی کے دروازے کے. مولا علی کا دروازہ واحد دروازہ تھا مسجد کے اندر کھلتا، حالانکہ بعض بڑے اصحاب نے ایسے اعتراض بھی کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے ہم سب کے دروازے بند کروا دیے، ہمیں مسجد سے نکال دیا سوائے علی بن ابی طالب کے. تو رسول اللہ نے جواب دیا اللہ کا حکم یہی تھا، میں کیا کرتا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، خدا نے یہی حکم دیا سوائے علی کے سب کے دروازے بند کرا، آئندہ کوئی مسجد کی طرف نہ کھلے. دروازہ کھلتا ہے اور امام حسین علیہ السلام، اس وقت امام حسین علیہ السلام چھوٹا بچہ ہے، 5 سے 6 سال کے ہوں گے، 5-6 سال، مسجد نبوی کے دوران خطبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں. اچھا اللہ کے رسول خطبہ جاری ہے، لوگ خطبہ سن رہے ہیں. اب آداب محفل کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے پوری محفل ہی ڈسٹرب ہو جائے. اصحاب نے دیکھا کہ نواسے رسول اندر آئے ہیں تو ایک صحابی اٹھا امام حسین علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے، لینے کے لیے، اوپر سے ممبر سے خطبہ روکا اللہ کے رسول، آواز دی دوران خطبہ، خطبہ روکا، کہا یا فلاں دعوہ ھذا ابنی واخذوان، کہے فلاں چھوڑ دو وہ میرا بیٹا ہے، میں خود ہی اٹھاؤں گا اسے جا کے. ممبر سے اترے، 2-3 پلوں کا تو ممبر، سیڑھیوں کا تو ہوتا تھا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، گئے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لے کر واپس ممبر پہ چڑھے. خطبہ رکا ہوا ہے، خطبہ کٹ چکا ہے، پوری مسجد کھچاخچ بھری ہوئی ہے، ہر مرد و زن دیکھ رہا ہے، بچے ہیں دیکھ رہا ہے، بڑے ہیں دیکھ رہا ہے، بزرگ ہیں دیکھ رہا ہے، خواتین دیکھ رہی ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں. اوپر لینے کے بعد سب سے پہلے قمیض کے بٹن کھولنے شروع کر دیا سب کے سامنے، سینے پہ بوسہ لگا، بوسے لگاتے گئے، گلے پہ آ گئے، گلے کے ادھر سے بوسے لگائے، پیچھے سائڈ پہ بوسے لگانا شروع کر دیا، ماتھے کو چوما، ہونٹوں کو چوما، گالوں کو چوما، اور اس کے بعد جو ہے اپنے زانوی اقدس پر بٹھایا اور خطبے کو پڑھنا شروع کر دیا. عزیز و پتہ ہے اس کے اندر ایک حکمت ہے، صرف عشق نہیں ہے، صرف محبت نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کی مقام و منزلت دکھانا نہیں، ایک پیغام بھی دے رہے اللہ کے رسول. اب چلتے ہیں ذرا سن 61 ہجری، تقریباً 54-55 سال کے بعد ایک واقعہ ہونے جا رہا ہے ریگستان کربلا میں. نواسۂ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پہ تشریف لا چکے ہیں، आगोश रेह ने, रेत के आगोश ने नवासे रसूल को अपनी गोद में लिया है, शिमर मलून करीब है इमाम आली मकाम के। नवासे रसूल की आंखों में खून की वजह से देख नहीं पा रहे, महसूस करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीने के ऊपर कोई दबाव आ रहा है, किसी ने कोई की कोई चीज रखी है। इमाम आली मकाम गोया हाथ लगाते हैं, मालूम होता है किसी नजिस आदमी ने अपना नजिस पाँव इमाम के सीने अकदस के ऊपर रखा है। ये वो मंजिल थी कि इमाम आली मकाम कहते हैं, तुम कौन हो? मन अंता कह रहा, तुम कौन हो? लकत इर्तकई तमुर्तकब अजीबा, अरे तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी और बड़ी जुरअत कर ली है, तुम जानते हो तुमने किस जगह पे पांव रखा है? तालाबा यो कब्बलहू रसूलुल्लाह, अल्लाह के हबीब मेरे इस सेने के बोसे लिया करते थे। अरे 54 साल पहले जो 5 साल का बच्चा था, तुमने हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन नहीं सुना होगा, हुसैन सफी ने नजात नहीं सुना होगा, लेकिन ये तो देखा था ना, 5 साल के बच्चे जो आज 54 साल के 50 साल के हो करबला में लश्कर यजीद में मौजूद हो, तुमने देखा नहीं था इमाम हुसैन को रसूल मेंबर पे ले गए थे, सीने और गले के बोसे लगाए थे। अरे सामने से गले को चूमना तो समझ में आता है, पसे गर्दन चूमने को दिल्ले सही नबी में बस मैं इशारा करता हूँ कि पसे गर्दन क्यों चूम रहे थे। दिल्ले सही नबी में साली अजहरा बेचैनी के आलम पे दोनों हाथ आसमान की तरफ करती है, कभी उमर साद को आवाज देती है, ऐ उमर साद तुम देख रहे हो दुख्तर अबू अब्दुल्ला, कभी कहती है खुदाया मुझे सबर देना, मेरी आंखों के सामने शिमरे मलून पसे गर्दन और कुल खंजर से मलून सर में لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة